नृतं येन तस्मै श्री गुरवे वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विजे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भुवेजो तं सर्वभूतविदयं मुन्नामते तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति दिग्ध्यै राधे तं नयमाम चरणम्
कल कुछ मध्वाचार्य जी के संबंध में कुछ उनके चरित्र और शिक्षाओं के संबंध में कुछ हुआ था, किंतु हम लोगों की विजयादशमी कल है अभी दो दिन पहले से किया था, इसमें कुछ वक्ताओं ने उनके संबंध में बोला था, किंतु बहुत से लोग आए हैं सुनने के लिए, कुछ आज प्रेम संपुट के संबंध में बात करेंगे और कल विजयादशमी के संबंध में, मध्वाचार्य के संबंध में और उसमें काली पूजा दुर्गा पूजा जो होगी उसके संबंध में आ जाइए। आसुन एखने आसुन जगह यहाँ पर आ जाइए। कल हम बतलाएंगे, आई विल स्पीक टुमारो अबाउट मध्वाचार्य विजयादशमी दैट राम विथ लक्ष्मण दे स्टार्टेड देयर जर्नी फॉर लंका एंड दे स्टार्टेड टुवर्ड्स लंका। सो एट दैट डे ऑल द क्षत्रियाज यूज टू देयर एवरीथिंग। After 3 months, Ravan was killed. So Vijayadashmi here to start for Vijay. This is me. So आज हम कल हम लोग tomorrow we will speak about that. You remember what I told yesterday, up to what stage I told? Radhika told that she will himself what massage the that tail. अब श्रीमती राधिका जी अपनी सखी जो देवांगना रूपधारी कृष्ण हैं उनको रोग को दूर करने के लिए उत्कृष्ट दिव्य सुगंधित तेल के द्वारा मर्दन करने के लिए थोड़ा सा गर्म जल ले आओ, ये सखियों से कहा, जरा गर्म जल ले आओ, पहले इसको स्नान कराऊंगी और फिर तेल मर्दन करके और इसका मुख उल्लसित करूंगी। जब रोग दूर हो जाएगा तो मुस्कुराने लगेगी और तब फिर ये हम लोगों के साथ में बातचीत करने लगी। सखियों, मैंने इतना कुछ कहा मधुर मधुर बात, स्वयं तेल मर्दन की बात भी मैंने कही और इस सखी के लिए हितकर कार्य में नियुक्त भी हुई और निष्कपट होकर के इसे बातें करने की चेष्टा की, तथापि एक मुख से बोली तक नहीं निकली। बड़ी कपट है ये, कपट है। अपने व्याधि अपने रोग की बात न कह करके चुपचाप मुख नीचे कर लटका कर दुखी होकर के बैठी है। अच्छा, मैं एक दूसरी उपाय करता हूँ। सखियों से गुप्त रूप से कहा, ओ धन्वंतरी जी ने मुझे एक दिव्य रस नामक एक औषधि प्रदान की है, स्वयं धन्वंतरी ने। इसे सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और इसके द्वारा इसका शरीर प्राण मन इंद्रिय की व्याधि दूर हो जाएगी और यह प्रसन्न वदन हो जाएगी, हंसने लग जाएगी और इसके द्वारा इसके शरीर की भी पुष्टि होगी। देखो, मैं इसकी पद्धति बतला रहा हूँ। पद्धति यह है, हम लोगों के कुंज के अधीश्वर का कर कमल यदि इसके वक्षस्थल पर एक बार भी स्पर्श करा दिया जाए तो ये जो अब तक बात नहीं कर रही है वो असाध असाध व्याधि भी तत्क्षणात् दूर हो जाएगी। तब मुस्कुराने लग जाएगी, बात भी बोलने लगेगी और भी बहुत कुछ करेगी। तात्पर्य क्या, अर्थात रसिकेंद्र शेखर कृष्ण के हाथों का स्पर्श यदि कर दिया जाए तो रोग क्षण भर में दूर हो जाएगा और न जाने कैसी एक अनर्वचनीय कांति इसके शरीर में उत्पन्न होगी और चिन्ह उत्पन्न होंगे कि कृष्ण के स्पर्श का असाधारण जो गुण है अष्टसात्विक विकार भी इसके अंगों में देखा जाएगा। माइक कोई नहीं दे रहा,
और नहीं पता
चक्षुरमितमेन तस्मात्
पीछे के लोग सुन रहे हैं, ऑल आर हियरिंग.
So continuing from the day before yesterday, Sri Mali Radhika had sent Vishakha Devi to bring some medicinal oil to rub on the head of Krishna, who had disguised himself as Shyam Sakhi. So Sri Mali Radhika said, "Alas, this Sakhi is quite a cheetah, because we have tried our best to remove, to find out the cause of her sadness, the cause of her disease, but she is not speaking anything. Therefore she ordered the Sakhis to take some warm water and to wash the mouth of that Shyam Sakhi."
No. To snan karayen.
I will do it.
Bath by warm water, and then to massage, then her disease will be removed, then she will be allowed to speak something. Then she will smile and become happy. Srimati Radhika said, "But if that doesn't work, I have another rasayan, another medicine. By placing this on her body, all the diseases of her body, mind and senses will be destroyed, and will all disappear. Thus the body will be nourished as well. This medicine was given to me by Dhanvantari. By this system, I will now put this upon her." Srimati Radhika said, "If Rasik Shekhar Krishna will come and touch this young girl upon her body, then definitely she will become okay and will be able to speak, and all her happiness will return. Because Krishna's touch is completely indescribable. And after something, Babs will appear upon her body without a doubt. And she will smile."
श्रीमती राधिका की इन वचनों को सुनकर देवंगना बेस्तारी कृष्णा कुछ मुस्कुराने तो लगे, किंतु उसको गोपन कर, उसे छिपा कर और मुख नीचे करते हुए और फिर मुख को उठाया और अपनी सुंदर सुंदर मनोहर अंगुलियों के द्वारा यहाँ पर जो गिर रहे थे गुंठन और अलकावली कुंचित केशों को थोड़ा सा हटाया और मस्तक का घुघट भी कुछ थोड़ा सा ऊपर उठा दिया और जैसे स्त्री बोलती है इस प्रकार मधुर स्वर से, स्त्रियों के स्वर से वो कुछ बोलने लगे. बोले, अच्छा, राधिका जी और राधिका की सहेलियां कृष्ण के मधुर वचन को सुनने के लिए चकोरी की भांति उत्सुक थी. अब इसको को थोड़ा सा सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई और सभी चमत्कृत हुई. कृष्ण कहने लगे, हे सुबदने राधे, परम सुंदरी राधे, मैं स्वर्ग की रहने वाली कोई एक देवी हूँ. जैसा तुम लोगों ने कहा वैसे ही मैं देवांगना हूँ, स्वर्ग लोक से आई हूँ. मैं किस लिए व्याकुल होकर के यहाँ पर आई हूँ वही मैं कहना चाहती हूँ. मुझे एक विषय का संदेश था, संदेह शंका थी, उस वो जानने के लिए इस स्वर्गलोक से इस लोक में आए। और वो मेरी जो इच्छा है उसको तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी दूसरा पूर्ण नहीं कर सकता, तुम भी पूर्ण कर सकती हो, वो मेरी इच्छा है। राधिका जी ने कहा, सुंदरी तुमने जो अपने को देवी कहा, देवी बतलाया, वह मिथ्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्वर्ग की देवी जैसी ही परम सुंदरी तुम हो, इस लोक में तो ऐसा कोई सुंदर हो नहीं सकता। हमने भी पहले यही अनुमान किया था कि तुम स्वर्ग से उतरी हुई कोई देवी हो, मर्त्य लोक में ऐसा सौंदर्य कोई नारी हो ही नहीं सकती, तुम्हारे रूप की इस जगत में कोई तुलना नहीं। उपमा के लिए केवल तुम ही तुम हो, तुम्हारे रूप की तुलना तुम ही के साथ में हो सकती है, दूसरा कोई नहीं है जिसे तुम्हारे रूप की तुलना की जाए। हे सर्व कमलानने, सर्व के काल में कमल बड़े सुंदर विकसित होते हैं, ऐसे विकसित मुख वाली सुंदरी मैं तुमसे, तुमने अर्थात राधिका जी ने तुमने जो कुछ कहा कि पति के विरह में तुम इतनी शोकातुर हो, या अब तक जितनी भी बातें कही हो राधिका जी कह रहे हैं, देखो हमने तुमसे इतनी जो बातें की है, पति विरहनी हो या पति ने तुम्हें छोड़ दिया है या तुम्ही ने पति को छोड़ दिया है, जो कुछ कहा है
सौतन आ गई,
मैंने सरलचित तुमसे केवल परिहास किया है, इसलिए तुम मेरा कोई भी अपराध ग्रहण मत करो। जब तुम हमारी स्नेहवती सखी हुई है तभी मैं, तब मैं भी तुम्हारी सखी हूँ, परिहास करने का अधिकार तो मुझे है ही। देवंगनाधारी कृष्ण, देवंगना वेशधारी कृष्ण बोला, ऐ सखी राधे तुम मेरी प्राण प्रिय सखी हो, तुम इतनी संकुचित क्यों हो रही हो? मैं देवी होने पर भी आज तुम्हारे सब प्रकार से अधीन हूं, यह विश्वास करो। तुम्हारे प्रेम और जितने अथाह गुण हैं उसका एक कण मात्र अनुभव करके और तुम्हारी दासी होने के लिए मैं यहां आई हूं, यही मेरे हृदय की प्रार्थना है। देवांगनाधारी कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हारे अनंत गुण हैं, तुम्हारा प्रेम अद्भुत है, उसका एक कण बन प्राप्त करके तुम्हारी दासी होने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अब जो मैं कहना चाहती हूँ अब मैं तुमसे, अब तक तो ये था
भूमिका
थी, अब इसके बाद में यथार्थ प्रेम संपुट आरंभ होगा।
Hearing the words of Srimati Radhika, Krishna began to smile a little bit, but to disguise his smile, Krishna hung his head a little bit, and with his very beautiful, delicate fingers, he brushed away the curls that had fallen upon his forehead. And thus, just like a girl, with a very beautiful, ladylike voice, Krishna spoke with Radhika and the Sakis. Hearing the very sweet voice of Krishna, Radhika and her Sakis became astonished. Her speech was just like a Kishori bird. Very beautiful. All became astonished. Krishna said, disguised as a Devakanya, "Hey Pansundari Radha, I am a lady from Swarga, the heavenly planets. And why have I come here? I have come here because I have a doubt about a certain subject. And apart from you, there is no one in this world who can completely fulfill my desire to have this doubt dispelled. That's why I have come down to this Mercurial, this planet, Earth planet. But no one else but you can completely fulfill my desire." Srimati Radhika replied, "What you have said is completely true. You must be a Devi from the heavenly planet. That is how you are so astonishingly beautiful. A woman from this world cannot have the beauty that you possess. You are equal only to yourself in your beauty. There is no one to compare to you. You are like a lotus from the heavenly planets. You are so much attractive." Then Srimati Radhika continued, "Actually, hey Sundari, whatever we said before in regards to your unhappiness, we asked, was the cause of your unhappiness that your husband left you, or that you left your husband, or your husband was not giving you so much affection? Actually, this was only a joke. Please do not accept anything we said as an offense. Because you are so dear to us, you are Priya Sakhi, because we have so much affection for you, therefore we think we have the qualification or the right to joke with you." So Krishna replied again, "Oh Radhe, you are indeed my crown Priya Sakhi, very dear to me. You have all good qualities. In fact, I am completely indebted to you. You have so much prema, which is astonishing and unlimited. You have so many unlimited qualities also. And just to attain one drop of that prema, I have come here actually to become your maidservant. And from this point, prema sambhut actually begins."
और कृष्ण कहने लगे, देवांगना वेशधारी कृष्ण, मेरी बातों को सुनो। मैं जिस लिए इस स्वर्ग को छोड़ करके तुम्हारे पास आई, मुझे एक बहुत ही हृदय में दुख था, विषाद था। वो था, मेरे हृदय में एक संशय उत्पन्न हुआ और तुम्हारे अतिरिक्त इस संशय को कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हारी अब तक की बातों को सुनकर मेरे हृदय का संताप भी दूर नहीं हुआ और मेरा संशय भी दूर नहीं हुआ। हे सखी, वृंदावन में जो बंसी ध्वनि होती है वह हम लोगों के स्वर्ग राज्य में भी पहुंचकर इतनी प्रबल होती है कि वहां की साध्वी रमणियां भी अपने पति के गोद में बैठी रहने पर भी उनके हृदय में उनके प्रति घृणा आ जाती है अर्थात निखिल जगपति श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुर करके उनका चित्त वहीं से आकृष्ट हो जाता है और पति और सब कुछ रहते हैं उनसे बिछुड़ करके वो कृष्ण के निकट जाने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। अपने पति के प्रति उनका मन नहीं धावित होता। श्री कृष्ण संबंधित वस्तु में इतनी ही अधिक सामर्थ्य है कि बिंदु मात्र उनका संबंध होने से प्राकृतिक वस्तुओं का की भोग वासना सब कुछ अनायास ही दूर हो जाती है। केवल बंसी ध्वनि ही नहीं, उनका रूप, उनकी वाणी, उनकी संबंधी या कुछ भी, वह बंसी ध्वनि हलाहल मिश्रित विष से बनी हुई है। पुस्तक देख रहे हैं ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है
आपको। एक ही बात हो गई ना,
हलाहल से मिश्रित विष। वो पुस्तक दो, पुस्तक मत देखो नहीं तो नहीं समझ में आएगा। डोंट सी बुक। हलाहल विष से मिश्रित अमृत के समान है। कहीं भागवत में या कहीं टीका में देखा गया कि हलाहल विष है या अमृत है।
समुद्र मंथन से जो निकला था उसको हलाहल
नहीं कहते हैं, वो हलाहल विष ही है अथवा अमृत मधुर अमृत है, स्थिर नहीं किया जा सकता। अर्थात श्रवण काल में अमृत के समान मधुर अत्यंत सुख की उपलब्धि होती है उसके पान करने से, कान से, और फिर कृष्ण के अप्राप्त होने से, कृष्ण के नहीं मिलने से उस समय में तीव्र दुख होता है, विषवत यंत्रणादायक होता है। जगत का जितना अमृत है सब मिला करके भी उसकी मधुरता के बराबर नहीं, और जगत का विष दामालन से लेकर के महाकटु विष उसके सामने कुछ नहीं। वही ध्वनि, बंसी की ध्वनि कानों में प्रवेश करते ही देवांगनाए श्री कृष्ण से मिलने के लिए उसकी लालसा में कंदर्प रूप महाद्वार ज्वर के द्वारा ऐसे आक्रांत हो जाती हैं, उनको मोह हो जाता है, मूर्छा हो जाती है। और उनका शरीर जलते हुए अंगार के समान में गर्म ताप युक्त हो जाता है। उस समय उनके पति उनके अंग को स्पर्श करने मात्र से ही जल उठते हैं और सोचते हैं कि हाय हाय, इतना महाज्वर विष, इसको व्याधि इसको कहाँ से आए, इतना तीव्र बुखार ज्वर कैसे हुआ। विचार करते करते शीघ्र ही उसको छोड़ देते हैं, प्रत्याग कर देते हैं, नहीं तो वो भी जल जाए, अलग बैठा देते हैं। कृष्ण की बंसी ध्वनि का इतना ही सामर्थ्य है, लो देखो सामर्थ्य है, श्रवण के साथ ही साथ श्रवणकारी के हृदय में भी कृष्ण के शरीर साथ मिलने की लालसा उत्पन्न कराकर उसे परम व्याकुल बना देती है।
So Krishna, disguised as Devakanya, she replied, "Oh Radhe, listen carefully. I left Swarga to come to this planet. Why? I was very, very unhappy there. Because there, in my heart, one doubt has arisen, and in this world only you can dispel that doubt. And so far, hearing your words, my doubt nor my unhappiness has been dispelled. Even in the heavenly planets, the sound of a Krishna's flute reaches there. And there the ladies of the heavenly planets, despite being on the laps of their husbands, on hearing the sound of Krishna's flute, they become mad and become ready to run to Krishna. Not only Krishna's flute, but anything which is related to Krishna, i.e. his form, his speech, his touch, anything which is related to Krishna is so attractive that it easily breaks the attachment that anybody has towards material objects. But it's very strange because it seems this nectar is actually mixed with a great poison. One poison is then called halahal in the churning of the milk ocean that was produced. But that halahal, actually, it seems like nectar. How? How can a bit of poison be nectar? Hearing the sound of Krishna's flute, that sound is like nectar. But the suffering that we receive upon not meeting Krishna, that suffering is like bitter poison. How sweet? All the nectar in the world combined cannot compare to one drop of the sweetness of Krishna's flute, and all the poison and suffering in the world combined cannot equal to one drop of the suffering that we feel in separation from Krishna. That sound enters the ears like Mahakandarpa, like Cupid himself. Thus, the ladies in the heavenly planet, we become unconscious. They feel a burning sensation in their bodies. And the husbands, they cannot understand where has this disease come from. And so much burning sensation is in their bodies that they keep those ladies separate in case they will also be burned.
हमारे कृष्ण कह रहे हैं हमारे स्वर्ग का एक दूसरा नाम त्रिदशालय है। त्रिदशालय दशा जहाँ पर है अर्थात बाल्य कैशोर और जौवन ये तीन दशाएं हैं बाल्य कैशोर और वहाँ पर कोई वृद्ध नहीं है वृद्ध होता ही नहीं बस तीन अवस्था इसलिए कोई वहाँ पर वृद्धारमणी नहीं है कोई बुढ़िया डोकरी नहीं है इसलिए बंसी ध्वनि को सुनकर वहाँ की जितनी रमणियाँ हैं स्वर्ग की देवांगनाएं हैं एक ही प्रकार की अवस्था होती है सब इसलिए कौन किसको तिरस्कार करेगी जब सभी मुग्ध होकर के कृष्ण से मिलने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है उस समय कौन किसका तिरस्कार कर सकती है अरे अपने पति को छोड़कर के जा रही है कृष्ण के पास कोई तिरस्कार करने वाला और कौन किसका उपहास करे किसी का कोई उपहास नहीं करता सभी की एक विचित्र दशा हो जाती क्योंकि मुरली का मधुर स्वर स्वर की नारियों के स्वतित्व धर्म को नष्ट कर सभी को ही पराजित कर देती है इस प्रकार प्रतिदिन बंसी ध्वनि सुन करके स्वर की देवियां सब समय मोहित होने लगी और एक समय मैं भी मन में विचार करने लगी वो किसका शब्द है कहाँ से शब्द हो रहा है कौन मुरली मधुर मुरली बजा रहा है इस प्रकार विचार कर बंसी ध्वनि का अनुसरण कर मैं स्वर्ग से भूमंडल में आई और कुछ दिनों तक बंसी भट्ट में सुख से मैंने निवास किया, जहाँ पर की राशस्थली थी और वहीं पर कृष्ण की मधुर मुरली बज रही थी। मैं तुम्हारे सहित कृष्ण की जितनी भी सुंदर अतुलनीय लीलाएं हुई हैं, लीला विलास हुआ है, मैंने अपने आंखों से देखा है किस प्रकार से तुम लोगों ने कृष्ण के साथ में रास नृत्य इत्यादि किया और तुम्हारी कांताओं को उनकी कांताओं को और प्रिय सखियों को भी मैंने पहचाना है। ललिता कौन है, विशाखा कौन है, चित्रा कौन है, चंपकलता कौन है, सब सखियों को मैंने परिचय पाया। मैं सबको जानती हूँ, पहचानती हूँ। दवांगना वेशधारी श्री कृष्ण की बात सुनकर श्रीमती राधिका कुछ हंसती मुस्कुराती हुई परिहास युक्त मधुर वचनों से बोली, अय धन्य सतपुरी में तुमको मैं सबसे अधिक चतुर समझती हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने वहां की नारियां अपने उत्कंठा रूप खड्ग से तलवार से अपनी और सब लालसाओं को काट कर कृष्ण के प्रति अनुरक्त हुई हो, यह तुम लोगों का परम सौभाग्य है। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए उत्कंठा अत्यंत इतनी उठती है जो कभी स्थिर नहीं हो पाती, नाना प्रकार की विषम रूप से, कभी हलाहल विष कभी अमृत जैसा अनुभव कर सब समय यंत्रणा भोग करती हैं। अतः इसीलिए तार नाम सुमना सुंदर मन हुआ है, कृष्ण की बंसी से सुमन हो जाती है तत् सुंदर। किंतु जब मुग्ध हो जाती हैं, मोहित हो जाती हैं, तो ये सुमना नाम व्यर्थ है और तुम उत्कंठा के साथ, क्योंकि वहीं पर आ जाती है, आती नहीं है, इसलिए सुमना नाम व्यर्थ है। और तुम क्या करती हो, तुम जहाँ उत्कंठा हुई कहाँ से बंसी आई उसी का अनुसरण करके यहाँ पर बंसी भट्ट में तुम आई उपस्थित हुई हो, अतएव तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। श्री राधिका के परिहासयुक्त वचनों को सुनकर देवंगना वेदारी कृष्ण मधु कांति द्वारा मुस्कुराते हुए मंद मंद आंखों को नचाते हुए बोले, राधे दूसरों नारियों को अपने समान मत समझो, अर्थात तुम जिस प्रकार पर पुरुष श्री कृष्ण की ओर आसक्त हो रही हो, मुझको उसी प्रकार से कृष्ण में अनुरक्त मत समझो। मैं कृष्ण में अनुरक्त नहीं हूं। क्योंकि यहाँ पर पुरुष श्री कृष्ण क्या हमको देखने में भी समर्थ हैं? मैं उनको देख सकती हूँ, वो हमको देख नहीं सकते। तब राधिका जी ने कहा, तुम यहाँ पर जिस कार्य के लिए जिस लिए यहाँ उपस्थित हुई हो, कृष्ण का विलास इत्यादि तुमने अनुभव किया देखा, इसलिए तुमको पर पुरुष की क्या जरूरत है, कृष्ण ही तुम्हारे पुरुष हुए। क्या हुआ, कृष्ण तुम्हारे लिए पर पुरुष नहीं है। श्री कृष्ण को का विलास तुमने अकेली देखा है, अनुभव किया और आकृष्ट हुई और फिर कृष्ण के निकट आई, तो फिर कृष्ण लिए किस लिए? कृष्ण तुम्हारे लिए पर पुरुष होंगे। जैसा भी हो मैं कुछ अतरंजित बात नहीं कर रही, अथवा तुम्हारे प्रति उदासीन हो करके केवल परिहासी नहीं कर रही, इसलिए तुम लज्जित भी मत हो। मैं तुमसे कभी भी झूठ बात नहीं बोल सकती। समुद्र कन्या लक्ष्मी, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी और पार्वती शंकर की पर्यंत सौंदर्य और सौभाग्य में तुम्हारे समान नहीं है। थोड़ा दूर है। इस प्रकार की बात चैतन्य चैतामृत में भी कही गई है, ये व्याख्या दे।
Is Chidasaloy. Chidasaloy means there are only three stages of life: Balya, Kishor, and Yovan. Balya means young age, Kishor means teenage, and Yovan means youth. There is no old age there. But hearing the sound of Krishna's flute, the name Chidasaloy became false because everyone became in the same situation. There are not three situations anymore, only one situation. What is that? there are no old ladies there. So therefore everyone became in the same mood. Chalo, let's go to Krishna. They're the mood of Pratibrata, being chaste and loyal to one's husband, has been completely crushed and defeated. All have become bewildered by the sound of Krishna's flute. So Krishna disguised as the Devakanya, she said, I began to think deeply, from where has this flute sound come? To whom does it belong to? So then, thinking in this way, I followed the sound of Krishna's flute from the heavenly planets and came down to this earthly planet. When I came here, I stayed for some days in Bansibat, where Krishna performed his Rasa Lila. There, from a distance, I saw all Krishna's Lilas. I saw you all dancing with Krishna. Therefore, this is how I have come to know all of you, who is Vishaka, who is Lalita, who is Champaklata, etc. Therefore, Radharani, Srimati Radhika was laughing. Oh, you are most fortunate. Therefore, you are very dear to us. Because with the sword of your Utkanta, or your desire to meet Krishna, you have separated yourself from all other desires. Therefore, only you are the most fortunate in the heavenly planets. To get Krishna, one thing is necessary: Utkanta, enthusiasm, desire. Therefore, once this Utkanta enters the heart, one cannot be pacified by anything else. Therefore, when one feels constant pain in this desire to meet Krishna, that is called sumana, good mind. But when we fall unconscious, then that quality of sumana is lost, because when you fall unconscious, you cannot go to meet Krishna. But you are most fortunate because you have crossed all this and you have met Krishna yourself. Hearing Radhika's joking words, Krishna also began to smile and said, O Radhe, you are not equal to other ladies. I am not equal to you also. because I'm not really so much attracted to Krishna at all. I'm not attracted at all because I am only seeing him. Actually, he has not seen me. I'm only watching from a distance. I can. So Radharani said, "You saw Krishna." Only you saw Krishna. Therefore, this is like proof that you are attracted to Krishna, and Krishna is not your Padapurush. Means Krishna is not a Padama lover for you, he is actually your own beloved. You have realized and seen his pastimes, therefore you are most fortunate. Therefore, your words. Therefore, we are not joking with you, because I can never say anything false to you. Srimati Radhika continued, because Lakshmi, who was produced from the churning of the milk ocean, Parvati, the wife of Shiva, none of them are equal to you in any way. Therefore, we cannot lie or tell false to you. You are really attracted to Krishna. Krishna is your Parapurush.
Radhika ji boli. तुमने कृष्ण का विलास इत्यादि देखा, इसलिए तुम्हारे लिए दूसरे परपुरुष की क्या जरूरत है, तुम कृष्ण ही की हो। जैसा भी हो, अब तुम बोलो कि तुम्हारा पूछने का मतलब क्या, पूछना चाहते किस विषय में तुमको संदेह। थोड़ी देर तक, एक क्षण के लिए मैंने तुमसे परिहास किया, वो अपनी सखी मान करके तुमसे प्रयास किया। तुम बतलाओ जो तुम क्या पूछना चाहती हो। दिवंगना वैश्यधारी कृष्ण बोले, सखी, जब तुमको सखी मान ही लिया है, तुम परिहास करो। तुमको परिहास करने से कौन रोक सकता है, और परिहास में तुमको कौन विश्व में पराजित कर सकता है। कोई भी पराजित करने वाला नहीं है, कृष्ण का है ना। परिहास में राधिका जी कृष्ण को हरा देने पर सब सखियां ताली बजाती हैं।
बाग जिद्द के लिए कुतुके ब्रजराज सोनो जितन मजाव
ही। सखी राधे, मैं तुम्हारी सखी हूं, यह तो साधारण बात है। तुम हमारी प्राण के समान प्राण प्रिय प्रियतमा हो। तुम मनुष्य हो, मानुषी हो, और मैं देवांगना हूँ। फिर भी मानुषी होने पर भी देव स्वर्ग लोक की स्त्रियां भी तुम्हारी पवित्र जगत को पवित्र करने वाली गुण और कथाओं की राशि को दंडक प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करती है। तात्पर्य यह, यद्यपि श्री राधिका लीलारस आस्वादन की लालसा में मानवी के रूप में प्रकट हुई हैं, किंतु मानवीता है नहीं, कृष्ण की लादनी शक्ति का सार, प्रेम का सार महाभाव और कृष्ण की ही समस्त सेवा की भावनाओं से ही बनी हुई भाव भाव स्वरूपा हैं, तथापि मनुष्य रूप में जगत में आई हैं, इसलिए उनको मानुषी कह रहे हैं, किंतु वो मानवी नहीं है। उन्होंने कहा, सखी, मैं तुम्हारी प्रशंसामूलक कोई बात नहीं कह रही, अथवा तुम्हारे प्रति उदासीन हो करके परिहास भी नहीं कर रही, इसलिए लज्जित मत हो। अपने सौंदर्य से लक्ष्मी पार्वती सबकी सौंदर्य को तुम पराजित करने वाली हो। जहाँ सौभाग्य गुण बंछे सत्य भामा, जाठाई कला विलास सीखे ब्रजरामा, जार सौंदर्य आदि गुण बांछे लक्ष्मी पार्वती, जार पतिव्रता धर्म बांछे अरुंधति, जार सद्गुण गणे कृष्ण ना पाए पार, तार गुण गणिवे केमन जीव छा। जिनके राजा जी के सौंदर्य सौभाग्य जितने भी गुण हैं उनको सत्यभामा पाने की लालसा रखती हैं, जिनके निकट ब्रज की दूसरी सखियाँ कला विलास सीखती हैं, ललिता विशाखा इत्यादि को ये सब कला विलास सिखलाती हैं, जिनके सौंदर्य को लक्ष्मी पार्वती इत्यादि और अरुंधति जैसी स्त्री पतिव्रता धर्म जिनके निकट सीखती हैं, कृष्ण भी जिन गुणों का आर पार नहीं पा सकते उसको जीव कैसे गणन करना। आज यही तक रहे और फिर आगे पीछे बदलाए गौ प्रमाण एक कीर्तन करो
You have seen the beauty of Krishna, therefore, what is necessary for any husband or any other man except for him? So please tell me, what is your question? For what reason have you come here? I joked with you only for 1 second, but you should present your doubt to me. What do you wish to ask? Krishna replied, O Radhe, who can defeat you in joking? Who can stop you from joking? When Srimati Radhika defeats Krishna joking, all the sakis clap their hands and chant Jai Sri Radha. Despite being a human, all the girls in the heavenly planets actually bow their heads and do pranam to you. Guru Maharaj says here that Srimati Radhika is not a human. Who is she? She is Krishna's own Ladini Shakti, who takes the form of a human in order to serve Krishna's human-like pastimes. So Krishna continued, O Radhe, don't be shy, because even Lakshmi and Parvati and the crest jewel of chaste women like Arundhati are defeated. Even they desire to achieve a drop of the speck of your ocean-like qualities, chastity, and your playful activities. Therefore, it is not even possible for the girls in the heavenly planets to achieve equality with you, and what to speak of the jivas of this world.
Hare Krishna, kal apna Guru Krishna ke anugrah mein parikrama karte rahiye, adi varaha, chet varaha, tatasthan tila, tarkadish darshan karenge. So, jo bhi chahna chahte hain ya chahte hain, आ सकते हैं कल हम कल हम